भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को घटाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। इसके बावजूद जब तक टकराव की खबर आ ही जाती है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत और चीन के बीच परमाणु हथियारों की होड़ नहीं है। यह बात उन्होंने रूस में कही है। गुरुवार को मास्को में एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने कई अहम मुद्दों पर भी अपनी बात कही। भारत रूस संबंधों को लेकर जयशंकर कहते हैं,
It is this deep sense of consideration for each other that has been the formula of our ties. Mutual interest mandates that this continues to be so between India and Russia. Now, an important reason why India and Russia readily accept multipolarity is their strong sense of independence. Perhaps such self-confidence is a natural outlook for large polities with a long history, a rich culture, and a deep-rooted identity. Our past may be different, but what they do have in common is a clear sense of national interest and a strong sense of national resolve. India and Russia will definitely see more common opportunities in the regions immediately beyond.
एस जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ आज बैठक करने वाले हैं। आज ही जयशंकर को जॉर्जिया के लिए भी रवाना होना है। इधर भारत अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में बदल रही परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है। अफगानिस्तान पर तालिबान की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि वहां की खराब होती स्थिति पर भारत नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची इस बारे में बताते हैं।
Our embassy in Kabul, our consulates in Kandahar and Mazar-e-Sharif are functional. We are, however, carefully monitoring the deteriorating security situation in Afghanistan and its implications on the security and safety of Indian nationals in Afghanistan.
और अब बात केंद्र की मोदी मंत्रिमंडल में हुए विस्तार और विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। गुरुवार को हुई इस बैठक में स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र से जुड़े मामलों पर कई फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि सरकार मंडियों को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है।
एपीएमसी के माध्यम से देश भर के किसानों को और लाभ देने का काम किया है, जैसा पहले ई नैम्स के माध्यम से भी मंडियों को और मजबूत करने का काम किया। पिछले वर्ष 15 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री जी ने 1,00,000 करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी और उसके बाद 1 फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में यह भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसी को जोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि एपीएमसी का और सशक्तिकरण हो, उनके माध्यम से और किसानों को लाभ मिल सके, उस दृष्टि से बड़ा निर्णय किया गया है कि ये जो 1,00,000 करोड़ रुपया है इसको एपीएमसी के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सके।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आंदोलनकारी किसानों की मांगों पर कहा कि नए कानून उनके हित में ही हैं।
एपीएमसी और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए 1,00,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है और इसके बाद निश्चित रूप से एपीएमसी की क्षमता बढ़ेगी। यह भी कहा जाता था कि एमएसपी के लिए समस्या जाएगी, तो आप सबने देखा जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार पैदावार भी बढ़ रही है, लगातार खरीद भी बढ़ रही है और दलहन और तेलन की भी खरीद बढ़ रही है। और जहां के लोग आंदोलन में अधिक हैं वहां के किसानों को हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंट में इस बार एमएसपी पर खरीद करके पेमेंट किया गया है। किसान यूनियन के नेताओं को यह अपील करना चाहता हूं कि वो गंभीरता से इन सब चीजों पर विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है।
नारियल किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए नारियल बोर्ड में सुधार किया जा रहा है। नरेंद्र तोमर इस बारे में बताते हैं।
इस नारियल बोर्ड के एक्ट में हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं। एक तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा, उसी परिक्षेत्र से होगा, किसान पृष्ठभूमि में होगा और जो फील्ड की गतिविधियों को ठीक प्रकार से समझ सके।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया है। आंदोलनकारी किसानों पर सवाल उठाते हुए मनोहर लाल खट्टर कहते हैं,
राजनीति है इसके पीछे, तो राजनीति से प्रेरित हो करके और वो इस अभियान को चलाए हुए, इस आंदोलन को चलाए हुए, इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनका सरोकार नहीं है और किसान तो आज भी इस नए कानून को अच्छा मानता है।
देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर जरूर पड़ी है लेकिन खत्म नहीं हुई है। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना है कि दूसरी लहर में आई समस्याओं से सीख लेते हुए कुछ निर्णय लिए गए हैं। स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए की घोषणा करते हुए मनसुख मंडाविया कहते हैं,
सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज टू लाया गया है। 23,000 करोड़ रुपीज का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीज दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीज निकालेगी। सभी के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के आधार पर कौन सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए।
आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बावजूद अभी भी रोजाना 40,000 के आसपास नए मामले सामने आ रहे हैं। ये आंकड़ा स्वास्थ्य जानकारों की चिंता को बढ़ाने के लिए अपने आप में काफी है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न, SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।